एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जब किसी ने ये मुझसे कहा जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले मेरा मन आनंदित हुआ मेरा मन झूमने लगा मेरा मन आनंदित हुआ मेरा मन झूमने लगा मैं तो प्रभु के घर प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, आज फिर से आपको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आनंदित हूँ। आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन सुनाने आया हूँ, और उससे पहले चलिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। तू हमारे मन हृदयों को खोल दे, जैसे हम तेरे संवाद को सुनते हैं, और हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दे पिता, और हमें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, ताकि हम तेरे संदेश को, तेरे वचन को समझ सके। मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, कि वे तेरे प्रेम को समझ पाए और तेरे नज़दीक आने सके पिता। विशेषकर मेरे संग हो, मुझे तेरे आत्मा के द्वारा चला, कि हम तेरा वचन को सही तरीका से तेरे लोगों को बतलाने सकूं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का संवाद का शीर्षक है, यीशु एक कनानी स्त्री की बेटी को चंगा करता है। यीशु एक कनानी स्त्री की बेटी को चंगा करता है। फरीसियों के साथ मुठभेड़ होने के बाद यीशु कपरनहूम से निकलकर गलील से होते हुए एक पहाड़ी प्रदेश फिनीके की सीमा के पास चला गया। पश्चिम की ओर देखने पर खुले और फैले हुए खेत थे, और नीचे की ओर प्राचीन नगर सूर और सैदा अपने मूर्तियों वाले मंदिरों से भरे पड़े थे। बड़े बड़े भव्य महल तथा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पर जहाजों का जमघट लगा हुआ था। उससे आगे मेडिटेरियन समुद्र का सारा इलाका फैला हुआ था। संसार के बड़े साम्राज्य के इस क्षेत्र में परमेश्वर के सेवकों को सुसमाचार का प्रचार करना था, परंतु अभी वह समय नहीं आया था। मसीह के सामने सबसे बड़ा काम अपने शिष्य को उनके उस महान मिशन के लिए तैयार करना था। इस क्षेत्र में आने से उसे आशा बंधी कि यहाँ पर उसे थोड़ा विश्राम मिल सकेगा, जो बेतसदा में नहीं मिल सका था। फिर भी इस यात्रा का केवल यही उद्देश्य नहीं था। और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, जिसे हम मत्ती 15:22 में पढ़ सकते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग प्राचीन कनानी जाति के थे, क्योंकि वे लोग मूर्ति पूजक थे, इसलिए यहूदी लोग उनसे घृणा करते थे। इन्हीं लोगों के जाति की वह स्त्री थी जो यीशु के पास आई। क्योंकि वह अन्य जाति की थी, इसलिए वह उन सुविधाओं से वंचित थी जिनका उपयोग प्रतिदिन यहूदी लोग कर रहे थे। फिनीके में बहुत से यहूदी रह रहे थे, और मसीह के अद्भुत कार्यों की चर्चा वहां पर भी पहुंच चुकी थी। उसमें से बहुतों ने मसीह के उपदेशों को सुना और आश्चर्यजनक कार्यों को देखा भी था। इस स्त्री ने भी सुन रखा था कि भविष्यवक्ता किस प्रकार से अनन्य रोगों से चंगाई देता है। जैसे ही उसकी सामर्थ के विषय में उसने सुना, उसके हृदय में आशा जाग उठी। ममता के प्रेम से प्रेरित होकर उसने अपने मन में ठान लिया कि अपनी बेटी के दुख को वह उसके सामने रखेगी। यह उसका दृढ़ संकल्प था, जो अपनी विपता को मसीह के पास लाने का उसने साहस किया। वह जानती थी कि मसीह उसकी बेटी को अवश्य ही चंगा कर देगा। उसने अपने देवी देवताओं से सहायता मांगी थी, परंतु किसी से भी उसे कोई आराम ना मिला था। एक समय तो उसके मन में ऐसी बात भी आ गई कि क्या यह यहूदी उपदेशक उसकी बेटी को चंगा कर सकेगा। परंतु जब उसने यह सुना कि उसके पास आने वाले चाहे अमीर हो या गरीब हो, वह सभी के हर प्रकार के रोगों को चंगा करता है, उसने फैसला कर लिया कि इस मिले हुए सुअवसर को वह हाथ से नहीं जाने देगी। मसीह इस स्त्री की दशा को जानता था कि वह स्त्री उससे मिलने के लिए बेकरार है, इसलिए उसने अपने आप को उसी राह पर डाल दिया। उसके दुख में सहायता करने के द्वारा वह उस शिक्षा का जीवित उदाहरण देना चाहता था जिसे सिखाने के लिए वह आया था। इसी उद्देश्य से वह अपने शिष्यों को इस क्षेत्र में लाया था। उसकी इच्छा थी कि वह उन्हें उन लोगों के भोलेपन को दिखाए जो इसराइल के आसपास के नगरों और गांवों में रहते थे। जिन लोगों को सुअवसर दिया गया था कि वे सच्चाई को जाने और समझे तथा दूसरों को भी बताएं, उन लोगों को अपने आसपास के रहने वालों की जरूरतों का कोई ज्ञान ही नहीं था। जो लोग अज्ञानता के अंधेरे में रह रहे थे, उनकी सहायता करने की कोई कोशिश नहीं की गई। यहूदी लोगों का घमंड उन लोगों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दिया था कि चेले लोग भी अन्य जातियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। इन तमाम बाधाओं को तोड़ डालना बहुत जरूरी हो गया था। मसीह ने तुरंत ही उस स्त्री की विनती का उत्तर नहीं दिया। जिस प्रकार से यहूदी लोग इस जाति के साथ व्यवहार करते थे, वैसा ही मसीह ने उस स्त्री के साथ व्यवहार किया। मसीह की इच्छा थी कि उसके चेले लोग इस बात को समझ लें कि यहूदी लोग किस प्रकार से कठोरता और हृदयहीनता के साथ ऐसे लोगों से व्यवहार करते हैं। मसीह ने भी उसी रीति से उस स्त्री के साथ व्यवहार किया और उदाहरण दिया कि किस प्रकार से शिष्यों को दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, जिस प्रकार से मसीह ने उसकी विनती को स्वीकार किया था। यद्यपि यीशु ने उस स्त्री को कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसका विश्वास कम नहीं हुआ था। वह उसके पास से होता हुआ ऐसा चलने लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो, और वह लगातार उसके पीछे पीछे चलते हुए विनती करती रही। उसके आग्रहपूर्ण हट को देखते हुए चेलों ने यीशु से कहा कि उसे वहां से हटा दे। उन्होंने देखा कि उनका गुरु उसके साथ कुछ अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, इसलिए उन्हें अच्छा लगा कि कनानियों के विरोध यहूदियों का जो घृणात्मक व्यवहार है वह उससे खुश है। परंतु यहां तो दयालु और कृपालु उधारकर्ता था जिससे वह स्त्री विनती कर रही है। चेलों के कहने पर यीशु ने उसे उत्तर दिया। इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यद्यपि यह उत्तर उन कट्टर यहूदियों की विचारधारा के अनुसार था, परंतु यह भाव चेलों को फटकारने का एक तरीका था जो बाद में उनकी समझ में आया कि वह उनसे कहता रहता था, मैं संसार में उन सभी को बचाने के लिए आया हूं जो मुझे ग्रहण करते हैं। वह स्त्री अपनी विनती को और अधिक आग्रह के साथ मसीह के कदमों में झुककर रोते हुए कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। अभी भी यीशु उसकी विनती को यहूदियों की धारणा के अनुसार रद्द करते हुए स्त्री से बोला, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यह इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि परमेश्वर के लोगों को मिली हुई विशेष आशीषें इज़राइल के शत्रुओं या दूसरी अन्य जातियों के लिए नहीं है। इस प्रकार का उत्तर कम विश्वास वाले व्यक्ति को अवश्य ही निराश कर देता दिया होता। परंतु उस स्त्री ने देखा कि उसे एक बहुत ही सुंदर अवसर मिल गया है। यद्यपि उसने बार बार यीशु के दृढ़ता भरे उत्तर को सुना था, परंतु साथ ही उसके हृदय में छिपी तरस की भावना उसे छिपी ना रह सकी। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। जब घर के बच्चे अपने पिता के साथ मेज पर भोजन करते हैं तो घर के कुत्ते भी बिना भोजन के नहीं छोड़ दिए जाते हैं। जो भोजन से भरी मेज से टुकड़े गिरते हैं उन्हें प्राप्त करना कुत्तों का अधिकार है। इस प्रकार से इज़राइल को अनगिनत आशीषें मिली हुई थी, तो क्या उन आशीषों में से वह चूर चार के लिए दावा नहीं कर सकती थी? यीशु अपने कार्य क्षेत्र से हटकर दूर चला गया क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोग उसके प्राण ले लेने की ताक में थे। वे बुड़बुड़ाने और शिकायत करने लगे। उन्होंने अपने अविश्वास और कड़वाहट को खुलम खुला जाहिर कर दिया तथा सेंट मेंद में दिए जाने वाले उधार को प्राप्त करने से मना कर दिया। और यहाँ पर मसीह एक ऐसी जाति से जिसे घृणा की नज़रों से देखा जाता था, जिन्हें परमेश्वर के वचन का प्रकाश नहीं मिला था, फिर भी तुरंत ही वह मसीह के ईश्वरीय प्रभाव के अधीन हो गई और उसके चंगाई देने की सामर्थ पर अटूट विश्वास हो गया कि वह उसकी विनती स्वीकार कर लेगा। वह मालिक के मेज से गिरे हुए टुकड़ों को पाने की विनती करती है। यदि कुत्ता बनने से ही वह उसकी आशीष को पा सकती है तो उसे कुत्ता बनना स्वीकार है। उसके साथ राष्ट्रीय अथवा धार्मिक कोई भी अन्यायपूर्ण या घमंड वाली धारणा नहीं थी जिसके द्वारा वह उसे प्रभावित करे। उसने तुरंत ही यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया और जान लिया कि जो कुछ वह उससे मांगेगी वह सब कुछ कर सकता है। मुक्तिदाता संतुष्ट हो गया। उसने अपने प्रति उसके विश्वास की परीक्षा ले लिया। उसके साथ अपने व्यवहार से उसने यह प्रकट कर दिया कि जिसे इसराइलों से बाहर अन्य जाति का समझ कर त्याग दिया गया था, अब वह एक विदेशी नहीं है बल्कि परमेश्वर के परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गई है। एक संतान होने के कारण पिता की आशीषों में से भागीदार है। मसीह उसकी विनती को स्वीकार कर लेता है और शिष्यों को एक पाठ पढ़ा देता है। उस स्त्री की ओर तरस भरी नजरों से देखते हुए प्रेम पूर्वक कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। दुष्ट आत्मा अब उसे फिर कभी नहीं सताया। मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हुए और उसकी विनती को स्वीकार कर लेने की खुशी से भरकर वह स्त्री वहां से चली गई। इस यात्रा में यीशु ने केवल यही एक आश्चर्यजनक कार्य किया था। इस अद्भुत कार्य को करने के लिए ही वह सूर और सैदा की सीमा पर गया था। उसकी इच्छा थी कि वह उस दुखी स्त्री को शांति प्रदान करे और साथ ही साथ सताए और कुचले हुओं तथा तुच्छ समझे जाने वालों के साथ उसके शिष्यों को उसके स्वयं के ना रहने पर कैसा व्यवहार करना होगा उनके लिए उदाहरण की प्रस्तुत करना था। उसकी इच्छा थी कि वह उन्हें यहूदियों की अलगाववादी नीतियों से हटाकर दूसरों की भलाई करने के विषय में सोचने की शिक्षा दे। यीशु ने चाहा कि सत्य का जो गहरा रहस्य युगों से छिपा हुआ है कि अन्य जातियां भी यहूदियों के साथ साथ परमेश्वर की वारिसदार हैं और मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं, जिसे हम इफिसियों के 3:6 में पाते हैं। इस सच्चाई को सीखने में शिष्य लोग बहुत सुस्त थे और ईश्वरीय शिक्षक पाठ पर पाठ उन्हें पढ़ाता जा रहा था। कपरनहूम में सुबेदार के विश्वास का प्रतिफल, समारिया में सुसमाचार का प्रचार किया जाना, उसने पहले ही प्रमाण दे दिया था कि वह यहूदियों की असहनीयता वाली आदतों से सहमत नहीं है, परंतु सामरियों को परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ ज्ञान था और सुबेदार ने इसराइलियों के साथ दया दिखाया था। अब यीशु ने चेलों को एक मूर्ति पूजक से साक्षात कराया जिसके विषय में उनकी धारणा थी कि उन लोगों को मसीह की ओर से किसी भी दया की आशा नहीं करनी चाहिए। वह उन लोगों के सामने एक उदाहरण देगा कि उनके साथ उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। चेलों ने सोचा कि मसीह अपने अनुग्रह की आशीष को बहुत अधिक सरलता के साथ लोगों में बांट रहा है। वह उन्हें दिखाना चाहता था कि उसका प्रेम किसी एक जाति, कुल अथवा देश के लिए सीमित नहीं है। जब उसने कहा, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, तो उसने सच ही कहा था। और उस कनानी स्त्री के साथ किए गए व्यवहार द्वारा वह अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा था। यह स्त्री खोई हुई वह भेड़ थी जिसे इसराइल को ढूंढना और बचाना चाहिए था। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, परंतु उन्होंने इसको करने में लापरवाही दिखाई और अब उस कार्य को मसीह कर रहा था। इस कार्य ने शिष्यों के दिमाग को बिल्कुल खोल कर रख दिया कि उनके सामने अन्य जातियों के बीच काम करने के लिए कैसे परिश्रम करने का अवसर आने वाला है। उन्होंने देखा कि यहूदियों से बाहर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां उन्हें सफलता मिल सकती है। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग दुखी जीवन बिता रहे हैं, परंतु जो लोग बहुतायत से आशीषित हैं उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं। जिन लोगों का तिरस्कार करने के लिए उन्हें सिखाया गया था वे लोग ऐसे थे जो सच्चाई के प्रकाश को पाने की भूख लिए हुए उस महान वैद्य से सहायता पाने की आशा कर रहे थे जो यहूदियों को बहुतायत से दिया जा चुका था। बाद में जब यहूदी लोग और अधिक दृढ़ता के साथ चेलों से दूर दूर रहने लगे, क्योंकि उन्होंने घोषित कर दिया था कि यीशु पूरे जगत का उद्धार करता है, जब मसीह की मृत्यु के साथ यहूदी और अन्य जाति के बीच की दीवार ढहा दी गई, तो यह सबक और इसी से मिलता जुलता यह संकेत दे रहा था कि सुसमाचार किसी देश या नीति अथवा परंपरा से बंधा हुआ नहीं है। मसीह के प्रतिनिधियों को अपना कार्य करने के लिए इसका बहुत भारी महत्व है। मुक्तिदाता का फिनीके जाना और उस चमत्कार पूर्ण कार्य को करना एक और विस्तृत उद्देश्य को प्रकट करता है, केवल उस दुखी स्त्री के लिए ही नहीं और ना ही उसके चेलों तथा उन लोगों के लिए जो उसके साथ परिश्रम कर रहे थे उसमें सफलता प्राप्त किए थे, बल्कि ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20:31। वही शक्तियां जो 2000 वर्ष पहले लोगों को मसीह से दूर ले जा रही थी आज भी अपने कार्य को कर रही हैं। वह भावना जो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच दीवार खड़ी कर रखी थी आज भी कार्यरत है। घमंड और पक्षपातपूर्ण व्यवहार ने मनुष्यों के बीच बंटवारे की दीवार को बहुत ही मजबूत बना रखा है। मसीह और उसके कार्य के उद्देश्य को गलत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे बहुसंख्य लोग ऐसे अनुभव करते हैं कि सुसमाचार की सेवकाई से उन्हें वंचित किया जा रहा है। परंतु उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे मसीह से दूर कर दिए गए हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा ना तो इंसान और ना ही शैतान खड़ा कर सकता है, विश्वास द्वारा पार ना कर दिया जाए। विश्वास से भरकर फनीके कि उस स्त्री ने उस बाधाओं को जो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच खड़ा कर दिया गया था उन्हें तोड़ते हुए अपने आप को मसीह के सामने पहुंचा दिया। उसके विश्वास में निराशा और संदेश उत्पन्न हो जाने की आशंका थी, परंतु मुक्तिदाता के प्यार पर उसने भरोसा किया। अब ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद नहीं, वह सब का प्रभु है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यह हम बाइबल में पाते हैं। यह हम रोमियो के काम 17:26-27, रोमियो 10:11-13 में भी पाते हैं। तो परमेश्वर सबको बचाने के लिए अपना बेटा यीशु मसीह को भेजा। वह सबसे प्रेम करता है और उसके सामने कोई ऐसे जाति ऐसे लोग नहीं है जो उसके उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके प्रेम के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम उसके पास आए, आइए हम उसके प्रेम में विश्वास करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर, हमें तू ग्रहण कर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संदेश के लिए कि तू महान है, तू सबसे प्रेम करता है, तेरे सामने सब बराबर हैं, कोई ऐसा जाति और राष्ट्र नहीं है जो तेरे उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन तू हमसे इतना प्रेम किया, तू अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को सबको बचाने के लिए दे दिया। हमें उसे ग्रहण करने के लिए मदद कर और हमें तेरा रास्ता में चलने के लिए सहायता कर पिता। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तेरे संवाद को ग्रहण करने के लिए मदद कर पिता, और हमें तेरे नज़दीक ला, हमें तेरे राह में चला। मेरे हरेक श्रोतागण के संग हो, उनको तू आशीष दे और हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर पिता। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।